ओम शांति। सभी सेवाधारी खुश हैं? खुश, बिल्कुल खुश रहेंगे, सदा रहेंगे। सहज है खुश रहना या कठिन, सोच के बताओ जरा। सहज है? सदा सहज तो नहीं है। तो आज हम खुशी पे ही क्लास करेंगे, खुशी खुशी से। और एक 10 सूत्री कार्यक्रम बनाना चाहते हैं हम, उसमें आप सब हिस्सा लेंगे। 10 पॉइंट प्रोग्राम, 10 पॉइंट प्रोग्राम, 10 बातें खुश रहने की। ठीक है, ठीक रहेगा? इससे पहले बाबा की मुरली पे एक नजर डाल लें जरा। कल पहली बात थी सर्व खजानों की। बाबा बहुत खुश हो रहे थे अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देखकर। उसमें कुछ खजानों की चर्चा कर दी बाबा ने। दूसरी पॉइंट थी कर्मयोग, कर्मयोग इसमें आत्मा के बारे में कुछ कुछ बताया। बोलो, मैं आत्मा हूँ, इस देह के मालिक हूँ, इस देह के द्वारा कर्म करा रही हूँ, पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया। तीव्र पुरुषार्थी की क्या परिभाषा दी? चारों सब्जेक्ट में संतुष्ट। और फिर कहा खुशी की बात बहुत चलती है मुरलियों में, सदा खुश रहना है। खजाने कौन कौन से हैं? पहले ज्ञान का, योग का, योग से कौन सा खजाना मिलता है? शक्तियों का। तीसरा, धारणाओं में कौन सा खजाना है? गुणों का। चौथा खजाना समय का, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। पांचवा, आप सोचो आगे, चुप क्या हो गए? समय का चौथा हो गया। पांचवा नहीं, वो प्यार, प्यार हो गया। परिवार, पर परिवार भी खजाना तो होता है, पर आगे बताओ। संकल्पों का खजाना छठा, यही जिस पे हम चर्चा करेंगे आज। खुशी का खजाना है या नहीं? बहुत बड़ा खजाना है खुशी का, सारी बीमारियां ठीक हो जाती है इससे। सातवा आ गया शक्तियों का, याद करो। और कुछ, दुआओं का खजाना है या नहीं? किसकी दुआएं मिलती हैं हमें? एक तो भगवान की दुआएं मिलती हैं, दूसरा महान आत्माओं की। और अगर महान आत्माओं की बददुआएं मिलने लगे तो क्या हो जाएगा? सोच लेना। महान आत्माओं की दुआएं मनुष्य को उड़ा सकती हैं, बददुआएं नष्ट कर सकती हैं। आठवां खजाना धारणाओं में एक और चीज जो बहुत बड़ा खजाना है, पवित्रता। और नौवा खजाना भी कहेंगे एक, पुण्य कर्मों का। सुख शांति प्रेम भी खजाने हैं, वो पवित्रता से जुड़ गए, धारणाओं से जुड़ गए, गुणों से जुड़ गए। इसलिए भारत में शास्त्रों में 9 निधि, 8 सिद्धियां, 9 निधियां, निधि माना खजाने, 9 खजानों का गायन है, 8 सिद्धियों का गायन है। तो ये 9 खजाने हमारे पास हैं, उसमें ज्ञान के खजाने ने हमारे जीवन को चमका दिया है, बहुत बड़ा खजाना मिला है। अब चलें खुशी। चारों सब्जेक्ट में संतुष्टता की बात पे अलग क्लास करेंगे। सदा खुश रहना है, किस किस परिस्थिति में खुश रहना है, क्या क्या याद करके खुश रहना है। जीवन में बहुत बातें आती हैं जो हमारी खुशी को छीनती हैं। कौन सी बातें हैं वो? 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाएंगे। बोलो, सब जानते हैं। हाँ, इसको हम नाम देंगे कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस। लिख लो, जो लिख रहे हैं लिखो, पहला कामनाएं, फिर मैं पूछूंगा तो एक एक का समाधान करेंगे। राजेश तुम लिखना नंबर से कामनाएं। दूसरा, देह की बीमारियां खुशी को नष्ट कर देती हैं, खुश रहने ही नहीं देती। तीसरा, और सोचो और थोड़ा प्रैक्टिकल करें, अपमान की फीलिंग, किसी के कड़वे वचन, बहुत अच्छा। चौथा, हाँ परिवार में क्या, परिवार भी खुश नहीं रहने देता आजकल, ये बड़ी समस्या है। परिवार में क्या, संबंधों में स्वार्थ। चार हो गए। पांचवा, किसी प्रियजन की मृत्यु, बहुत बड़ी चीज होती है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी। आगे चलें, अब मैं कुछ बताता हूँ, आप आगे सोचना। पांच हो गए। हाँ, वो तो सारा ही कारण है। छठा, अवगुणी दृष्टि, अवगुण देखा, खुशी समाप्त हुई। अब आगे बोलो। सातवां, हाँ कर्मेंद्रियों का रस। आठवां, हाँ इच्छाएं और असंतुष्टता। नौवां, ज्ञान, बोलो ज्ञान, ज्ञान ज्ञान मनन की कमी है या नहीं। ज्ञान मनन अच्छा होगा, आंतरिक खुशी रहेगी। कुछ लोग बाहर से हंसते हैं, वो अलग चीज है। दुनिया में भी थोड़े लोग ऐसे मिलते हैं जो खुश रहते हैं। और बताओ, खुशी गुम करने वाली भिन्न भिन्न परिस्थितियां, व्यर्थ संकल्प, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं आजकल। ये बीमारी बढ़ती जा रही है संसार में, ब्राह्मणों में भी और बाहर भी, व्यर्थ संकल्प, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, उससे खुशी नष्ट होती है। और बोलो, दस हो गए लेकिन आगे चलो। भौतिक साधन उनकी कमी, वो न मिलें, खुशी गुम, ये इच्छाओं कामनाओं में आ गया, पर लिख लो और सोचो।
जो प्राप्ति उसका,
हाँ जो प्राप्ति बाबा से हमें हुई है उसका हमें पता ही नहीं, एहसास नहीं, बहुत अच्छी बात है ये भी। और आगे चलो। ड्रामा के ज्ञान की विस्मृति है या नहीं, परिस्थिति आती है तो ड्रामा का ज्ञान लोप, एकदम खुशी गुम कर देता है। और कौन सी परिस्थिति आती है जीवन में, है हाँ ठीक बोल रहे, डर, डर भी खुशी को नष्ट करता है। उसमें विशेषकर भविष्य की चिंता, भविष्य का डर, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, भविष्य का डर मनुष्य को खुश नहीं रहने देता। और पास्ट का चिंतन खुश नहीं रहने देता। और आगे सोचो। संस्कारों का टकराव, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, टकराव जहाँ है वहाँ खुशी का प्रश्न ही नहीं। कितने भी साधन हो, बहुत अच्छा भोजन मिल रहा हो, सब ठीक ठाक हो, लेकिन लड़ाई हो रही हो, पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो, होगी खुशी? कितना भी धन हो, बच्चे हो, सब सब बेकार लगता है, टकराव। और आगे चलो। हाँ धन की कमी, ये भी ठीक बात है, धन की कमी भी खुशी को नष्ट करती है। भाई मनचाही बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकते, मनचाही चीजें नहीं ले सकते, बीमारी भी है तो इलाज नहीं करा सकते, ये चीजें खुशी को नष्ट करती हैं। और बोलो। हाँ बीमारी आ गई, और बोलो, हैं हाँ वही डर, इनसिक्योर फीलिंग, ये भी बहुत बड़ी चीज है। डर के साथ लिख लो इसे भी, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योर फीलिंग, प्राकृतिक आपदाएं जो मनुष्य की खुशी को पूरी तरह नष्ट करेंगी। मैंने सुना अभी नॉर्थ इंडिया में कुछ होने वाला है, अनाउंस किया है, होगा या नहीं वो नहीं, होने वाला है। इसने भय का वातावरण बना दिया है, पता नहीं क्या होगा, डराएंगे ना ये चीजें भी। और कुछ याद आए तो बताना, पहला कौन सा था? कामनाएं। ये मनोविज्ञान का बहुत अच्छा सिद्धांत है, कामनाएं अगर 100 हैं तो खुशी 0, कामनाओं को अगर 100 करना है तो, कामनाओं को अगर, खुशी को अगर 100 करना है तो कामनाओं को 0 करना पड़ेगा, निष्काम भाव। और ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। इसको प्राप्त करने के लिए सालों साल मनुष्य को ज्ञान और योग की साधना करनी पड़ती है। माताओं को देखो, माताएं बैठी हैं, आपने अपने बच्चों की बहुत प्यार से पालना की, उनके लिए कष्ट सहे, मान लो आप उनके लिए भूखे रहे और बच्चे अच्छा व्यवहार न करें, क्या होता है? माताएं बेचारी कुछ कह तो नहीं पाती, परंतु खुशी नष्ट हो जाती है, उदास रहने लगती हैं। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाओ सच्ची, कुमारों की। ऐसे तो कुमारों को समस्या बहुत आती हैं। एक कुमार मेरे पास आया बेचारा, अभी मैं बेचारा ही मेरे मुख से निकल रहा है, अभी अभी 3 दिन पहले, कहा मेरी 2 बहनें और मैं, तीनों ही ज्ञान में हैं, बहुत अच्छे हैं तीनों ही। अब माँ बाप की इच्छा है मैं शादी करूं, वो तो इच्छा होती है, पर कहा एक समस्या है, मैं अकेला ही लड़का हूं, पर एक समस्या बहुत बड़ी है कि उन्होंने 12 साल बहुत भक्ति की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, तब मेरा जन्म हुआ। अब मैंने कह दिया शादी नहीं करनी है, बताओ माताएं क्या होगा? अब इस बेचारे के मन में उसकी स्थिति देखने जैसी थी, माँ बाप से प्यार भी वो तो होता है बच्चों का, और माँ बाप का भी बहुत प्यार तीनों से, और उन्हें पता है ये तीनों ही शादी करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जिसको 12 साल की साधनाओं के बाद उन्होंने पाया था, समझ सकते हैं ना, अब इसकी खुशी नष्ट है। मेरे को आप ही कहने लगा कि मेरी एक इच्छा होती है, माँ बाप को दुखी देखता हूँ, सहा नहीं जाता, शादी कर लेता हूँ। क्या कहना चाहिए बोलो? आपके सामने ऐसा केस आ जाए तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल मनोवैज्ञानिक हो गई, भावनात्मक हो गई है। मैंने भी उसे कहा कि अगर ज्यादा स्थिति बिगड़ जाए, समझाना, कोशिश करना, नहीं तो तुम शादी करना और फिर पवित्र मार्ग अपनाना, वो तुम्हारे हाथ में होगा। और वो इसके लिए तैयार था कि एक बार माँ बाप शांत हो जाए मेरे। ऐसी परिस्थिति भी लोगों के सामने आती, कुमारों के सामने बहुत आती है। मेरे पास ऐसे कुमार आते ही रहते हैं, आते रहते हैं, जो अकेले बच्चे हैं, न बहने हैं और कोई नहीं, माँ बूढ़ी हो गई है, बाप भी नहीं है, माँ और बेटा है, माँ बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, अब समस्या है। ऐसे में भी बैलेंस रखना बहुत बड़ी चीज है। हम सभी अपनी खुशी को सदा कायम रखने के लिए अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाएंगे। ये जो आंतरिक खुशी हमें रहेगी, बाहरी हंसने की बात नहीं, मन प्रसन्न रहे, ये रहेगा स्वमान के अभ्यास से, ज्ञान के चिंतन से और फिर योग। इन तीनों के द्वारा ही हमारा चित्त निरंतर प्रसन्न रह सकता है। और अगर कोई बातें जीवन में आती भी हैं, आएंगी जरूर, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कुछ ना आता हो, तो हम उन्हें सहज पार कर लेंगे। याद रखना है, जीवन में महत्व इस चीज का नहीं होता कि परीक्षा में पेपर कैसा आया, क्वेश्चन हार्ड आ गए, इसका महत्व नहीं। महत्व किसका है? नंबर कितने मिले। पेपर बहुत सरल भी आ गया हो लेकिन नंबर अच्छे ना आए हो, उसका कोई महत्व नहीं होगा कि पेपर बहुत अच्छा था, हार्ड नहीं था। तो ये याद रखना है, जीवन में परीक्षाएं कितनी भी देनी पड़े, महत्व इस चीज का है कि हमने नंबर कितने लिए, नंबर कितने लिए। और ये सब नंबर हमारे जमा होते हैं, ये बाबा ने बताया हुआ है, रोज की परीक्षाओं में लिए गए थोड़े थोड़े नंबर फाइनल में जमा होते हैं। यानी जो रोज की परीक्षाओं में पास होंगे उनको ही फाइनल पेपर में पास होने का अनुभव भी हो जाएगा, शक्ति भी आ जाएगी। और सबसे बड़ा पेपर कौन सा है जो मनुष्य की खुशी को गुम कर रहा है, वो बात भूल गई थी, उस पर बहुत ध्यान देना है। सूक्ष्म है मोह, ये सूक्ष्म है, मोटा नहीं है। कोई माता कह दे मैं तो बच्चों से बिल्कुल मोह नहीं रखती, हटाओ इन्हें मेरे से, मोह हटेगा नहीं। मैंने ऐसी कितनी माताएं देखी हैं, कितने मेरे पास आते हैं जिनका डायवोर्स हो गया छोटी आयु में, दो बच्चे छोटे और दोनों पति ने रख लिए। अब मां का हाल देखने जैसा है, मैं उसे लाख समझाया तुम तो बंधन मुक्त हो गई, लेकिन नहीं, समझती है ना माताएं, मोह की तृप्ति उसे योग युक्त बना रही थी, उसका योग अच्छा होता था, बच्चे साथ थे, मोह तृप्त था ना। अब वो मोह उसे आकर्षित कर रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा। और उन्होंने क्या किया हुआ, ऐसे कई केस होते हैं कि जो दूसरे परिवार वाले होते हैं ना जिनके पास बच्चे चले गए, वो माँ की बुराई कर देते हैं बच्चों को बहुत, तुम्हारी माँ अरे वो तो चोर है, तुम्हारी माँ उसने तो बहुतों को मार दिया है, तुम्हारी माँ तो डायन है, उसके बाहर ना चले जाना, खा जाएगी तुम्हें। और जब इस माता को ये पता चलता है बहुत दुख हो जाता है। तो ये तो कलयुग के समाज की सारी स्थिति है, हम जानते हैं कलयुग में इससे अच्छा और क्या हो सकता है, बुरा ही बुरा है, नहीं तो ये कलयुग क्यों होता। तो हमें बहुत ध्यान देना है अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाने पर। एक एक पॉइंट बहुत गहरी है, 15-16 कितने पॉइंट हो गए, 15 हो गई, 18 हो गई होंगी, 18 हो गई। देखिए सभी गुह्य बातें हैं और एक एक पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। संसार में सबसे ज्यादा दुखों की लहर फैलाएगा मोह, विनाश काल में यही सबसे खतरनाक होगा। हमें अपने को किस चीज के लिए तैयार करना है, एक तैयारी करेंगे सभी, और ये तैयारी बहुत सुंदर है। आप इस, मैं दो चीजें बताता हूँ आपको, मैं क्लासेज में सुनाता रहता हूँ। एक है मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है, या है, कई बाबा के बच्चे बाबा को छोड़ देते हैं, बाबा ने मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया, मैंने बाबा के लिए इतनी सेवाएं की, तन मन धन लगाया और बाबा ने मेरा बच्चा भी ले लिया। सच तो ये है कि मृत्यु पर भगवान का भी अधिकार नहीं है। क्या सोचते हैं भाई लोग, सत्य है या नहीं? माताएं क्या सोचती हैं? मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। एक दिन में कितने लोग मरते हैं संसार में, पता है माताओं को? माताओं को नहीं पता हो, 2 लाख की मृत्यु, 2.5 लाख का जन्म। कुछ दिन पहले का था ये, अब थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा। इतने लोग रोज मरते हैं, इस पर इसके लिए कोई बाबा सबको ले जा रहा है? वो तो बहुत बिजी हो जाए इतना काम करे तो, बड़ा भारी कंप्यूटर रखना पड़े उसको, सुप्रीम कंप्यूटर सबका लेखा जोखा। ये काम ऑटोमेटिक है, तो क्या करेंगे? जिन चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है उन्हें हम स्वीकार करके चित्त को शांत करें। बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी सबको। बात बिल्कुल सिंपल है लेकिन आत्मबल बहुत चाहिए इसके लिए। ऐसे जीवन में बहुत बातें हैं जिन पर मनुष्य का अधिकार नहीं होता। मैं देखता हूं कुछ अच्छे लोग मुझे मिलते हैं, अच्छे तो सारे ही मिलते हैं ब्राह्मण। एक अच्छे व्यक्ति की कहानी सुनाऊं, अभी इसी ग्रुप में एक माता अपने परिवार को लेकर आई। उस माता का एक लड़का, जिसकी आयु बड़ी नहीं है, 15-16 साल की है, कैंसर का शिकार हो गया और कैंसर उसको इतना फैला कि एक टांग काट दी, यहां से अभी काटी है। अब वो एक टांग पर ही मेरे कमरे में आ गए, ऊपर 3 लोग आए एक साथ, तीनों ऐसे थे, वो ली हुई थी बैसाखी कहते हैं, व्हीलचेयर पर नीचे तक आए, मेरे कमरे में चढ़ गए। मैं बहुत कहा भाई तुम मुझे बताते, मैं नीचे आ जाता। नहीं, वो लड़का बहुत खुश और उसकी माँ भी खुश। अब हैरान होंगे इस स्थिति को देखकर। मैं उससे पूछा तुम्हारी एक टांग कट गई? कह रहे एक तो है अभी, उसको ये खुशी कि एक तो है। उनको पता है कि इसकी मृत्यु होगी, माँ को पता है क्योंकि कैंसर उसकी छाती में फैलता जाता है, लेकिन वो लड़का इतना खुश है, देखने वाला था उसका चेहरा बहुत खुश। तो मैंने उसको कहा, मैं भी देख लिया कि देखो ये बचेगा तो नहीं, मैं बताया नहीं उनको, पर मैं देख लिया ये बच्चा बचेगा तो नहीं। मैंने कहा तुम खुशी का एक संकल्प रखना अपने मन में कि मरना तो है ही, लेकिन इस तरह मरना है सारा संसार इस मृत्यु को देखे, ठीक है ना? मरना तो है। माँ को मैंने समझाया तुम्हारा हाल का, ठीक है जो जो भी कुछ हो रहा है उसको कुछ विधि सिखाई। कुछ लोग ऐसे हैं हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखने का मार्ग ढूंढ लेते हैं, वो हैं सबसे अधिक बुद्धिमान। कि जो कुछ हो गया है, अब इसको कैंसर हो गया, कैंसर ऐसा रोग है डॉक्टर इसके बारे में कह नहीं सकते कि हम पूरा ठीक कर देंगे, एक जगह ठीक करते हैं दूसरी जगह निकल जाता है, सबका हाल बिगड़ता जाता है। ये तो केवल एक गुलजार दादी है जिस पर क्या कहेंगे, प्रभु कृपा है बहुत ज्यादा, उसकी आयु तो पूर्ण हो चुकी लेकिन वो अच्छी तरह जिंदी है। ये तो बाबा की कमाल है उनके साथ, नहीं तो वो जिंदी नहीं रह सकती। डॉक्टर अशोक मेहता जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, जो इलाज करते हैं मुंबई में, उन्होंने बताया मेडिकल साइंस के अनुसार तो दादी की मृत्यु 92 में हो गई है, उसके बाद वो जी नहीं सकती। हमारा विज्ञान इसका कोई उत्तर नहीं देता कि वो जी कैसे रही है, कहो तो मर जानी चाहिए, लेकिन ईश्वरीय शक्तियों का ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो ऐसी परिस्थिति जो मृत्यु के समीप ले जा रही है उनको, एक बच्चा और आया, वो भी दोनों टांगे उसकी पोलियो में हैं, वो भी बहुत खुश बहुत खुश। तो अपने को खुश रखना अपने हाथ में, जिसने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे दी क्या होगा, जब चाहे वो उसे डाउन कर देंगे, जब चाहे रुला देंगे। दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं, ये दोनों बातें बहुत सुंदर हैं लेकिन अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। सुनी होगी आप सबने नाना के ज्ञान में, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। स्वीकार करें सभी, जो कुछ हो रहा है वही बोलो, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। क्यों सत्य है? यही क्यों होना है ये भी हमें जानना चाहिए ना, हमें आपको पता है क्यों होना है, क्यों ड्रामा है, क्यों है। और आगे चलो, पॉइंट पर आ जाओ। हाँ, किस आधार पर ड्रामा बना है? कर्म फल, कर्म फल। ड्रामा ऐसे थोड़ा आप ही बन गया, या ड्रामा बाबा ने बना दिया, दोनों ही बातें नहीं है। न वो आप ही बना, न बाबा ने बनाया, वो बनाया हम सब ने। कर्म फल, कर्म फल। तो जिसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है। इसलिए जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, कर्म अनुसार वही होना चाहिए। इसको बहुत पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय अच्छा होगा या खतरनाक? खतरनाक शब्द भी उसके लिए थोड़ा कम खतरनाक है, अति भयानक होगा, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। संसार में दुखों के वाइब्रेशन फैल जाएंगे। मैं कल सोच रहा था, हमें एक ऐसा अच्छा ग्रुप चाहिए, इंद्र प्रताप तुम भी बैठा है, हमें एक ऐसा अच्छा ग्रुप चाहिए, मुझे बनाना है वो ग्रुप जो ऐसे वाइब्रेशंस फैलाए कि सबके दुख दूर हों, जो ऐसे वाइब्रेशंस फैलाए कि रात को सभी सो जाएं। समझ गए ना? सो नहीं पाएंगे बहन जी, आपके पास इतनी दवाई नहीं होगी जो सबको दे सकें, नींद नहीं आएगी लोगों को, इतनी टेंशन, कष्ट, दुख, भय, क्या होगा, ये सब होगा। ऐसे में एक अच्छा ग्रुप हमें बनाना, मुझे बनाना है, मैं बनाऊंगा, जिसमें अच्छे योगी होंगे, जो ऐसी वाइब्रेशन फैलाएंगे आधा घंटा कि अनेक आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं। और रात को हम उनसे योग कराएंगे 10:15 बजे, 15-20 मिनट, सब सो जाओ, फिर हम सोएंगे। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, हमें खुश रहना है। हमारी खुशी क्या करेगी? संसार की सभी आत्माओं को खुशी प्रदान करेगी, क्योंकि हम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम सब धर्मों के पूर्वज हैं, हम सृष्टि के आधार मूर्त हैं, हम मुक्तिदाता भी हैं, जीवन मुक्तिदाता भी हैं। हमारी स्थिति पर सारा खेल निर्भर करेगा, तो हमें खुशी बांटनी है। कल बाबा ने कह दिया तो वो भी खुश, हम भी खुश, डबल फायदा हो जाएगा। खुशी बांटने का अर्थ ये है कि हमें किसी की खुशी छीननी नहीं है, और बांटना अर्थात दूसरों के मन को हल्का करके, उनकी समस्याओं का हल करके, उन्हें साथ देकर, सहयोग देकर, दृष्टि देकर, वाइब्रेशंस देकर, समस्याओं को हल करके उनकी प्रसन्नता को बढ़ाना है। ये काम सभी को करना होगा। बोलो करेंगे? करेंगे या अपने ही दुखों में रहेंगे? ऐसा समय आएगा अपने दुख भुलाने ही पड़ेंगे, दूसरों के दुख निवारण करने के लिए अपने को दुखों से ऊपर उठाना ही पड़ेगा। मैं कहानी सुनाया करता हूँ, हमारे जब भुज में, कच्छ में भूकंप हुआ ना, तो हमारे यहाँ से 8-8, 10-10 का ग्रुप जाता था। आपको पता हो, एक देश की सरकार ने 4 कंटेनर सामान भेजा था, कंटेनर होते हैं बड़े बड़े जो ट्रकों के ऊपर चलते हैं, आपने देखा हो, लंबे चौड़े, और किस कौन बांटे उसे, उन्हें था सरकार तो आप ही खा जाएगी उसके लोग, तो ब्रह्मा कुमारियों को दिया था, बैठी है ना भुज वाली बहन, ब्रह्मा कुमारियों को दिया था। तो हमारे यहाँ से भाई जाते थे तो एक कथा एक कहानी सुनाई, सच्ची घटना कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ सेवा करता था। तो वहां के भी लोग होते थे ना, कुछ अपने भाई बहने कुछ और भी आ जाते थे, और भी काम होते थे, भोजन बट रहा है, बहुत बहनों ने काम कराया था तब। तो उससे पूछा इन्होंने, भाई आपका परिचय? कहा देखो भाई मैं हूं एक किसान, था एक किसान, मैं उस दिन सवेरे जल्दी चला गया खेतों में, मेरे तीन बच्चे अपने परिवार सहित घर में थे, वो बाद में आने वाले थे, भूकंप हुआ वो सब मर गए हैं, तीन बच्चों के परिवार पूरे मर गए हैं। तो कहा तुम? कहा मैं वहां से आया और मैंने देखा कोई नहीं है, दुख तो होता ही है, रोना भी होता है। कहा मैंने अब सोच लिया कि मेरे कोई बहुत पाप कर्म थे, उसकी सजा मुझे मिल गई है, मरना मुझे चाहिए था, बूढ़े को मर गए छोटे और बड़े बच्चे, अब मैं ऐसा पुण्य करूं कि आगे तो मुझे सुख रहे, इसलिए मैं सेवा में लग गया। एक डीएसपी वहां का मिलने आया हमसे, मैं वहां गया था, तीन बड़े ऑफिसर मिलने, एसडीएम एडीएम और डीएसपी। डीएसपी बड़ा रमणीक था, कहा भाई मैं तो इंदौर की तरफ उधर घूमने गया हुआ था, ट्रेन में ही पता चला कि भुज में तो भूकंप हो गया है, भूकंप हो गया तो मैंने भी सोच लिया कि हमारे भी सब मर गए होंगे। का स्टेशन पर आया, विनाश देखा, गाड़ी तो पहुंच गई, चारों सुनसान और शमशान। कहा मैंने सोचा हमारे भी सब मर गए हैं, फिर भी सोचा कि चलो एक बार देख तो आऊं। घर गया तो कहा सारे ही जिंदे थे, बड़ा हंसाया उसने कि अब फिर मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा। हंसा रहा था पुलिस वाला था ना ऑफिसर, तो खुश रहना अपने हाथ में है। उसने बताया कि मैं स्टेशन पे आया, जब मैंने सोचा कि सभी मर गए होंगे, सोचा अब तो अकेले जिएंगे मजे से, कोई जिम्मेदारी नहीं, और फिर जब देखा तो ऐसे कहा। तो हमें हर हाल में खुश रहना है। परिस्थिति जो हमने निकाली 18, इस पे तो 18 घंटे क्लास हो सकता है, एक एक बात पे लंबी चौड़ी चर्चाएं हम कर सकते हैं, पर ड्रामा का सुंदर ज्ञान हमारे पास रहे, मृत्यु और कुछ नहीं क्या है, एक वस्त्र उतार कर दूसरा धारण करने का नाम है। ठीक है, जो आज हमारे हैं वो कल किसी और के थे और कल किसी और के होंगे, इस चिंतन को गहराई से अपने अंदर लाना पड़ेगा, मृत्यु के बारे में हमें अपने को तैयार करना पड़ेगा। ये सब हमारे हैं, मनुष्य सोचता है ना ये ना मरे बाकी भले ही सब मर जाएं, नेचुरल है, हर मनुष्य सोचता है, परंतु तैयार करना पड़ेगा अपने को, सबको जाना है। और विनाश काल में क्या होगा, मैं एक बात और सुना दूं, ये सब्जेक्ट तो अभी नहीं है, बाबा ने 83 की मुरली में बता दिया था, जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था तब की मुरली है, उसी दिन की, अगले दिन शायद बाबा आए थे। बाबा ने कहा था विनाश काल में आत्माओं का पुनर्जन्म जल्दी जल्दी होगा, उससे जन्म और मृत्यु से विकर्म तेजी से नष्ट होते हैं। सबसे ज्यादा कष्ट आत्मा को होता है जन्म लेने में, मृत्यु में। तो कहा थोड़े समय में 5-7 पुनर्जन्म हो जाएंगे आत्माओं के, एक एक साल में हो सकता है ना, एक एक डेढ़ साल में, इससे संसार में बहुत हाहाकार फैलेगा। माँ को बच्चे ने जन्म लिया, बहुत खुशी हुई, 4-6 मास में मर गया, कष्ट हाहाकार हो जाएगा। तो हमें मृत्यु के बारे में जो सत्य ज्ञात है उसका स्वरूप बनना ही पड़ेगा, कि मृत्यु और कुछ नहीं, वस्त्र बदलने का नाम है, हमारा प्यार आत्माओं से होना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए, जो हमारे घर में आए थे उनका हमसे हिसाब किताब इतना ही था, पूर्ण हो गया, उनको जाना ही है, कोई किसी का नहीं होता हिसाब किताब पूरा होने के बाद। देखो आजकल भी हम देखते हैं माँ का बच्चों से बहुत प्यार, बच्चों का माँ से बहुत प्यार। बच्चे बड़े हुए, पूरे संग में गए, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आजकल गंदगी बहुत है, माँ का प्यार खत्म। माँ को कुछ नहीं, पूछते ही नहीं। माँ शत्रु लगती है उन्हें। अगर माँ कह दे कि बेटा टाइम पे आ जाया करो घर 9-10 बजे तक, नहीं 12-1 बजे ही आना है, वो शत्रु लगती है उन्हें। प्यार खत्म, प्यार सदा कायम रहता भी नहीं। तो ऐसे ही दूसरों के कटु वचन हमारी खुशी को छीनते हैं। सबसे भारी काम यही होता है कि दूसरों के कटु वचन और अपनों के कटु वचन, दूसरे माना तो कोई राह चलते बोले हम मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने बोले तो मुस्कुराएंगे तो भी उसे गुस्सा आएगा, आएगा ना। तो अपने जब कटु वचन बोले, अपमान करें, हमारी भावनाओं को हर्ट करें, उसको भी हमें सहज भाव से लेना, स्वमान में रहना, ताकि उनके शब्द हमें हल्के लगे, इसका हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है। तो सभी इन 18 बातों को देखते हुए जो बात हमारी खुशी को नष्ट करती है उस पर विशेष फोकस करें, ध्यान दें उस पर। हर एक की अपनी अपनी होती है, किसी के लिए मृत्यु बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन कुछ बूढ़े भी ऐसे होते हैं। मेरे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आया था, 75 साल का था, उसकी पत्नी 72 साल की थी, उसने शरीर छोड़ दिया और ये 75 साल का बूढ़ा डिप्रेशन में चला गया। बहुत अटैचमेंट होता है ना, अब उसको अकेला जीवन में चलना। मैंने उससे पूछा बच्चे हैं? बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी हैं। फिर भाई तुम्हें खुश रहना चाहिए, जाना तो था ही, पर कहा वो पहले क्यों चली गई, पहले मुझे जाना था। मैंने कहा फिर उसका हाल खराब होता। हमारे इस पार्क में एक ने प्रश्न पूछा, ये हमारे इस पार्क की मीटिंग चल रही थी ना नीचे, तो उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो था सतयुग की राज व्यवस्था। तो 400-500 भाई बहनों ने उसमें हिस्सा लिया, बाकी में 50-50 रह गए। तो एक ने प्रश्न पूछा, बाबा कहते हैं सतयुग में नारी विधवा नहीं होगी, पहले वो मरेगी और जन्म भी उसका बाद में होगा, यानी उसकी आयु भी छोटी होगी पति से, तो क्या नारी की आयु पुरुष की आयु से बहुत छोटी होगी? हो गई नहीं बात की? तो मैंने कहा क्यों, छोटी 2 दिन भी हो सकती है और 1 दिन पहले भी जा सकती है, 3 दिन के अंतर से भी तो काम हो सकता है, हो सकता है या नहीं? जरूर थोड़ा है, 2-4 साल पहले ही लक्ष्मी शरीर छोड़ेगी और नारायण अकेला जिएगा, नारायण को दुख नहीं होगा क्या? तो कहते नारी विधवा नहीं होती, वहां पर नर भी तो होगा ना विदुर, होगा या नहीं? तो अंतर छोटा सा ही रहेगा, बड़ा नहीं, बड़ा अंतर नहीं होगा कि 2-4 साल पहले शरीर छोड़ देगी लक्ष्मी, नहीं, 2-4-5 दिन पहले, 1-2 मास पहले, बस इतना ही। क्योंकि नारी का जीवन ज्यादा इमोशनल होता है ना, उसको कष्ट ज्यादा होता है। तो हम सभी अपने अपने को चेक करेंगे और अपनी खुशी को ऊंचा उठाएंगे। बाबा तो हमें सदा खुश देखना चाहता है ना, उसे अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे भगवान के बच्चे और दुखी, भगवान के बच्चे और परेशान, उसको परेशानी हो जाती है इनके लिए क्या करूं अब, ये तो खुशी ही नहीं रहते। कुछ ऐसे भी लोग हैं संसार में, उन्हें चाहे सब कुछ मिल जाए वो तो भी खुश नहीं रहते। हमेशा नहीं रहना है, कुछ ना हो तो भी बहुत खुश। आज बाबा ने कहा था, बेगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, ये आज के महावाक्य हैं, मैंने ध्यान से सुने, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो सब कुछ तुम्हारा। ओम शांति।
मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आंखों में छाया है, सदा ये आंखों में छाया है, دل والا مدھبن کا بابا، دل والا مدھبن کا بابا، دل میں سمایا ہے مدھبن کتنا مدھر مدھر ہے، مدھبن کتنا مدھر مدھر ہے۔ परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग, बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है।